ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर सी उदय भास्कर और कोलंबो में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता अहमद मोइन फारूकी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
नमस्कार श्रोताओं, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक क्षेत्रीय सुरक्षा मंच है जो दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि सामान्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। ये सम्मेलन भारतीय महासागर क्षेत्र के देशों को एक साथ लाता है और आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक नजर डालेंगे। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं सुरक्षा विशेषज्ञ कोमोडोर उदय भास्कर और प्रसार भारती के विशेष संवाददाता श्रीलंका से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अहमद मुईन फारूकी। कोमोडोर भास्कर, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
और डॉक्टर फारूकी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
डॉक्टर फारूकी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी वहीं पर हैं, तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि ये क्या है।
देखिए, कोलंबो जो सुरक्षा सम्मेलन है, या इसको हम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव भी कहते हैं इंग्लिश में
जी,
सीएससी एक ऐसा एक रीजनल ग्रुपिंग है जो शुरू हुआ था तीन देशों के साथ जुड़ने के साथ साथ 2011-2012 वक्त में। फिर दरमियान में चूंकि कुछ रीजनल इश्यूज थे, उन वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन 2020 के बाद दोबारा इसमें तेजी आई। भारत ने इसको बहुत पहल दिया। अब यहां हम ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण हमें क्यों है। हिंद महासागर, जिसको हम इंडियन ओशन रीजन भी कहते हैं, ये हमारा नेबरहुड के एरिया में पड़ता है और यहां रीजनल सिक्योरिटी, यानी जो इस एरिया में, इस रीजन में जो हम सुरक्षा और स्थिरता की हम चुनौतियों को देखते हैं, इनके लिहाज से अगर आगे हम बढ़ें तो मैरिटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भारत के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एक रीजन है जहां से हमें ट्रेड हम निर्भर कर सकते हैं। इससे हम भारत की जो सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी हम इंश्योर कर सकते हैं, और इस लिहाज से भारत इसको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्णता इसको प्रदान करता है। और इसी डायरेक्शन में सागर आउटलुक, यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, भारत इसको बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हुए इसको प्रायोरिटाइज कर चुका है। अब पिछले 10 साल में इस डायरेक्शन में जाते हुए, इस दिशा में हम आगे बढ़ते हुए, भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ साथ इसको भी बहुत ही ज्यादा आगे रखने की कोशिश कर रखी है
जी।
और इसी डायरेक्शन में ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव जो शुरू में ये थे, तीन देश थे, इनके साथ साथ भारत ने मॉरिशस और बांग्लादेश को भी इसमें जुड़वाने की पहल भारत ने लगाई थी। अब इसके साथ साथ सेशेल्स को भी ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे भारत ने प्रस्ताव रखा और सेशेल्स अब ऑब्जर्वर इस ग्रुपिंग में मौजूद है
जी।
यहां पर जो चुनौतियां आमतौर पे सामने आती हैं, जिनमें ट्रैफिकिंग का एक इश्यू आता है, यहां पर टेररिज्म का इश्यू आता है, यहां पर और भी दूसरे इश्यूज आते हैं जो क्राइम रिलेटेड भी हैं, और जो एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजीज रीसेंट टाइम्स में है उनको भी लेकर साथ में इस रीजन में बहुत ही ज्यादा जो सिचुएशंस आ सकती हैं, इनको काउंटर करने के लिए भारत इसको बहुत ही ज्यादा महत्व देता है
जी। कोमोडोर भास्कर, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी डॉक्टर फारूकी ने बताया मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने बात करी है, तो मैरिटाइम सुरक्षा जो है इस सम्मेलन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा, और भारतीय महासागर में सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं या आपकी नजर में किए जाने चाहिए?
हिंद महासागर में ये जो मैरिटाइम सिक्योरिटी या सागर के साथ जुड़ा हुआ जो सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, ये काफी पुराने हैं, यानी कि चुनौतियां बहुत सारे इस पूरे क्षेत्र के सामने आए हैं और कई बार भारत ने कदम उठाया है और एक प्रकार से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से कई बार भारत ने छोटे देशों का मदद में उन्होंने कई प्रकार का पहल लिया है। उदाहरण के लिए जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर फारूकी साहब ने किया है कि इंडियन ओशन रीजन में, आपको शायद याद होगा कि नवंबर 1988 की बात है, जबकि मालदीव्स में एक प्रकार का कू का प्रयास हुआ था, मर्सनरी कू जिसको कहते हैं
जी।
भारत के फौज ने ऑपरेशन कैक्टस को हमने पहल दिया था और उससे एक प्रकार से मालदीव्स के अंदर जो सरकार है उसको बचाया था। ये मेरे ख्याल में सबसे एक पहला ऐसा एक घटना था जहां की मैरिटाइम सिक्योरिटी में एक चुनौती पैदा हुआ था और उसको एक प्रकार से सकारात्मक रूप से उसको झेलने के लिए भारत ने कदम उठाया था। ये है नवंबर 1988। उसके बाद शायद आपको याद होगा कि दिसंबर 2004 में एक बहुत बड़ा सुनामी हुआ था हिंद महासागर में, और उस वक्त ही भारत ने कदम उठाया था और भारत के फौज, खास भारत के नौसेना ने जितने भी छोटे क्षेत्रीय हिंद महासागर के देशों को हमने मदद पहुंचाया था। और उसके बाद मैं कहूंगा कि भारत की जो विश्वसनीयता है मैरिटाइम सिक्योरिटी या सागर के साथ जुड़े हुए जो सुरक्षा के चुनौतियां हैं उसमें भागीदारी के लिए कई सारे जो छोटे देश हैं उन्होंने भारत की जो भूमिका है एक प्रकार से स्वीकार किया है। तो उसके बाद जैसे पहले भी बताया गया है कि ट्राइलैटरल मैरिटाइम कोऑपरेशन हमने 2011 में शुरू किया था जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव शामिल थे, पर कई सालों में कुछ खास उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ था। और हाल में ही अभी जब से मोदी साहब ने ये सागर का जिक्र किया था 2015-16 की बात है, तब से लेके आज तक धीरे धीरे हिंद महासागर के मुद्दों के ऊपर भारत जो है रीजनल कोऑपरेशन या क्षेत्रीय भागीदारी को बढ़ोतरी देने के लिए कई पहल किया है। उसने ये कोलंबो का जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जो CSC है इसका एक खास भूमिका है। छोटे जो आइलैंड के देश हैं, जो छोटे द्वीप हैं, जैसे श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेशेल्स है, ये सब इसमें शामिल है। और अभी हमने 5 अलग अलग पिलर या स्तंभ बनाया है जिसमें रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ोतरी देने के लिए भारत ने अभी ये बाकी देशों के साथ एक चार्टर का हस्ताक्षर किया है और एक परमानेंट CSC का सेक्रेटेरिएट बनने वाला है। और ये जो 5 पिलर हैं, सबसे पहले ये तो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट सी, यानी कि सुरक्षा के साथ जुड़े हुए कई सारे ऐसे होते हैं, जहाजों को कभी कभी चुनौतियां होता है, पायरेसी की बात होती है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर होता है, ये सब एक खास एक बास्केट या वर्टिकल है। दूसरा है दहशतगर्दी, किस प्रकार से दहशतगर्दी को हम रोक सकते हैं और रेडिकलाइजेशन उसके साथ साथ, जो कि एक उभरने हुआ मैं कहूंगा चुनौती है। अभी हम देख रहे हैं कई देशों में, कई प्रांतों में ये रेडिकलाइजेशन का शुरुआत हो रहा है, उसको रोकने के लिए और क्या वो किसी प्रकार का बड़ा चुनौती बन सकता है पूरे क्षेत्र के लिए। तीसरा है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं, सीमा पार जो गैर कानूनी कार्रवाई होते हैं जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स है, गन रनिंग है, कई प्रकार के ऐसे जो गैर कानूनी कार्रवाई है जिससे छोटे देशों की जो सुरक्षा और जो अखंडता है उसके लिए बहुत बड़ा चुनौती बन सकता है। चौथा है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि मैं कहूंगा अभी टेक्नोलॉजी की वजह से एक बहुत नया चुनौती है, जटिल चुनौती है, और अगर इसको हम काबू में नहीं ला पाएंगे, उदाहरण के लिए देखिए हिंद महासागर में इतने छोटे और बड़े मर्चेंट शिप्स होते हैं, अगर उनके ऊपर मान लीजिए साइबर अटैक हो जाता है तो उसको सामना करने के लिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। और ये जो शुरुआत है CSC में जिसमें साइबर सिक्योरिटी को उन्होंने रेखांकित किया है, मैं कहूंगा ये काफी एक अहम कदम है। और लास्ट से है ये जो डिजास्टर रिलीफ होता है, प्रोटेक्शन इन डिजास्टर रिलीफ, जैसे हमने सुनामी का जिक्र किया था, तो इसके लिए भी तैयारी करना चाहिए। पोल्यूशन का भी हमको सामना करने के लिए कुछ तैयारियां जैसे कोस्ट गार्ड करता है जी। तो इसमें भारत के पास जो क्षमता है, भारत की जो विश्वसनीयता है, ये छोटे देशों के साथ भागीदारी के रूप में अगर हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो पूरे क्षेत्र के लिए ये फायदा है, भलाई है। और हमको देखना है कि हिंद महासागर को किस प्रकार से एक सुरक्षित जगह हम बना सकते हैं।
डॉक्टर फारूकी, अभी कॉमोडोर भास्कर ने बताया कि सबके भागीदारी जो है बहुत जरूरी है, तो अभी हमने देखा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। तो नए समझौतों में कौन कौन से विशेष सहयोग के क्षेत्रों में बात की गई या प्रमुखता दी गई, इस पर थोड़ा हमें बताएं।
देखिए, अभी कॉमोडोर उदय भास्कर ने जो 5 पिलर्स बताए हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा महत्व है, और अजीत डोभाल जब आए थे यहां कल उन्होंने सबके बीच में चर्चा की, और वहीं पर उन्होंने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ जो लीडरशिप है उनके साथ भी इस बारे में, इस विषय पे ये बात किया। और ये प्राइमरीली जो प्रमुखता जो दी जा रही है वो है क्षेत्रीय सहयोग में, किस वजह से इसकी आवश्यकता है। एक तो जो आतंकवाद और कट्टरता का मुकाबला है
जी,
या फिर समुद्री सुरक्षा, जैसे उदय भास्कर जी ने कहा कि इन 5 स्तंभों के ऊपर बहुत ज्यादा इस बारे में चर्चा हुई। और इसके अलावा लीडरशिप के साथ जो अलग जो मुलाकात हुई उसके दौरान जो श्रीलंका का फ्यूचर हो सकता है जिसमें पावर सरप्लस की एक पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर भी बात की गई।
कॉमोडोर भास्कर, अभी आपने बताया कि इस रीजन में भारत सबकी भागीदारी चाहता है, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्मेलन का भारतीय उपमहाद्वीपों में समग्र सुरक्षा वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन रीजन जितना है।
देखिए, हिंद महासागर जो है वो अपने आप एक काफी बड़ा एक ओशियानिक रीजन माना जाता है, पर उसके अंदर जैसे अभी हम साउथ एशिया की बात करते हैं, उसमें अभी शुरुआत जो हुआ था वो भारत, श्रीलंका, मालदीव के साथ हुआ था, और धीरे धीरे ये जो मेंबरशिप है ये बढ़ गया है, और जैसे पहले बताया गया है अभी इसी ग्रुपिंग में सीएससी के आधार हमने मॉरिशस को भी शामिल किया है, सेशेल्स भी है, बांग्लादेश भी है, तो अर्थात ये कि अगर आप हिंद महासागर का कल्पना कर सकते हैं तो आप ईस्ट और वेस्ट और साउथ सदर्न इंडियन ओशन का धीरे धीरे सब देशों को शामिल करने के हम कोशिश में हैं। आपने साउथ ईस्ट एशिया की बात की है, अभी भारत जो है वो क्वाड का भी एक मेंबर है, क्वाड के अंदर चार देश हैं जिसमें भारत के अलावा जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। ये जो हम पांच पिलर्स की हमने बात किया है, ये सारे जो चुनौतियां हैं ये साउथ ईस्ट एशियन देशों के लिए भी एक कलेक्टिव तरीके से अगर हम देखें सबके लिए, जितने भी 10 देश वहां पे है उनके लिए भी ये एक काफी बड़ा चुनौती है, चाहे वो दहशतगर्दी हो या ड्रग ट्रैफिकिंग हो, गन रनिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर वगैरह वगैरह। तो अगर भारत अपनी जो अनुभव है, जो तजुर्बा रहा है, जैसे सुनामी है या किसी और पोल्यूशन कंट्रोल जो है, जैसे आपको याद होगा पिछले साल भारत ने कोस्ट गार्ड ने काफी मदद दिया था श्रीलंका को, जब दो बार हुआ था कि बड़े बड़े जो जहाज है वहां पे उनका ऑयल स्पिल हुआ था, तो अगर हम हिंद महासागर का जो फुटप्रिंट है उसको और बढ़ाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये सब चुनौतियां एक प्रकार से कॉमन है, और वो भी साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ वो अपनी भागीदारी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत जो है ये सागर का जो हमने ढांचा बनाया है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अगर इसको हम ये साबित कर सकते हैं कि यदि किसी प्रकार का भी चुनौती हो, जो शक्तिशाली देश हैं जिनके पास क्षमता है, अभी जैसे भारत के पास है जो कि छोटे देशों के पास नहीं है, या जापान के पास कई प्रकार के ऐसे क्षमताएं हैं खास सर्वेलेंस के लिए, जापान का जो कोस्ट गार्ड है वो पोल्यूशन में काफी माहिर है, पोल्यूशन कंट्रोल में, ऑस्ट्रेलिया की अपनी क्षमताएं हैं, अगर हम छोटे देशों को हिंद महासागर में, चाहे वो यहां पे हो या क्वाड या पैसिफिक की तरफ भी हो, साउथ ईस्ट एशिया की जो आपने जिक्र किया है, तो ये पूरे क्षेत्र का भलाई होगा। तो वही जो कल्पना था कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, वो एक प्रकार से उस दिशा में हम पूरे क्षेत्र को ले जा सकते हैं, और इसमें भारत की भी भलाई है, क्षेत्र का भी भलाई है, और जो इंडियन ओशन है इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सबके लिए बहुत अर्जेंट है, वो है क्लाइमेट चेंज और ओशियानिक पोल्यूशन। ये भी मुद्दे हैं जो कि हिंद महासागर का जो डेमोग्राफी जो कहते हैं, यानी कि जो हिंद महासागर के साथ जो जुड़े हुए जो लिटोरल देश हैं, जो समुद्र के किनारे पे हैं, वहां के जो नागरिक हैं उनके लिए ओशियानिक पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज वगैरह बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो इनके ऊपर भी एक प्रकार का रीजनल ही नहीं, पूरा मैं कहूंगा कि इंडियन ओशन और पैसिफिक देशों का कोऑपरेशन होना चाहिए, और ये एक प्रकार का शुरुआत है, ये छोटा कदम है पर बहुत मैं कहूंगा कि महत्वपूर्ण कदम है। अभी देखना है कि कोऑपरेशन के आधारित, भागीदारी के आधारित हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि अंत में ह्यूमन सिक्योरिटी, जो कि आपको याद होगा अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते थे कि योगक्षेमा, सिटीजन या नागरिक की जो भलाई है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और उसमें सागर का, ओशंस का एक बहुत बड़ा भूमिका है जो ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये सब जो रीजनल कोऑपरेशन है ये इस ह्यूमन सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रयास है।
अब समय है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। कॉमोडोर उदय भास्कर जी और डॉक्टर फारूकी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कॉमोडोर सी उदय भास्कर और कोलंबो में प्रसार भारती के विशेष संवाददाता अहमद मोइन फारूकी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।